ओम शांति। थोड़ा प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आज हमारे बीच बाबा के चैतन्य बगिया के विशेष पुष्प आदरणीय डॉक्टर बनर्जी भाई जी हैं, हमारे बीच में हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आदरणीय भाई जी ने 1973 में होम्योपैथी में स्नातक किया, उसके बाद तन और मन से अपनी सेवाओं को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित करने का आपने निश्चय किया। आप मेडिकल विंग के सेक्रेटरी हैं, एवर हेल्दी हॉस्पिटल के आप डायरेक्टर हैं, चाहे वो शांतिवन में हो, चाहे ज्ञान सरोवर में हो, चाहे पांडव भवन में हो। आपने 50 से भी अधिक और ज्यादा होगा हेल्थ कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में संचालित की और स्वास्थ्य मेलों का भी काफी आयोजन किया है। आपका बहुत सारी विशेषताएं हैं, आप कोऑपरेटिव नेचर है आपकी, हर्षित मुख तो सदाई रहते हैं आदरणीय भाई जी, आप बहुत निरहंकारी हैं और सदा खुशी से सेवा का भाव रहता है। आज नहीं, हम बचपन से आदरणीय भाई जी को देख रहे हैं कि अगर किसी को भी तकलीफ होती है तो भाई जी अपने स्वास्थ्य को नहीं देखते हैं और उसकी सेवा में, चाहे उन्हें अहमदाबाद, चाहे उन्हें बॉम्बे, जहां भी जाना हो, लेकिन उसको स्वस्थ करने में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। तो ऐसे परम आदरणीय भाई जी, कहना चाहूंगी हालात वो न रखें, हालात वो न रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखें जो हालातों को बदल दे। तो आदरणीय भाई जी आज हमारे बीच सुनाएंगे स्व स्थिति से परिस्थिति पर हम कैसे विजय प्राप्त करें। पुनः हम उनका स्वागत करेंगे और अभी उनके मुखारविंद से जो शब्द निकलेंगे उसे अपने जीवन में सजो के रखेंगे। आदरणीय भाई जी,
थैंक यू बहन जी। ओम शांति। गीत कितना सुंदर था, जीवन की नैया किसके हवाले करना है, करना है या कर दिए हैं? कर दिए हैं तो बहुत वंडरफुल है। भगवान के हवाले जिन्होंने अपने जीवन को कर दिया, क्या परिस्थिति उनके नजदीक आ सकती है या वो दूसरों को परिस्थिति को दूर करेंगे? क्या है, स्वयं के नजदीक परिस्थिति आएगी या दूसरों के परिस्थिति को वो दूर करेंगे? जिनकी नैया, जिनका पतवार, जिनका केवट स्वयं परमात्मा है, उसको कोई चिंता है, कोई फिकर है? उनकी नैया कहाँ रहेगी? उनके जीवन में नैया के आगे पीछे कुछ आ सकता है? कुछ नहीं आ सकता है। लेकिन कहाँ बैठे हो आप, कहाँ से आए हैं, किस दुनिया से आए हैं? कलयुगी दुनिया से आए हैं। हम हैं संगम पर, संगम पर बाबा है, बाबा की छत्र छाया है, लेकिन कहाँ हैं? कलयुगी दुनिया में, जहाँ पग पग पर समस्याएं हैं। वो हमारे लिए नहीं है, हमको अच्छी तरह भली भांति पता है, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान है, तो उसको हम ज्ञान से उस परिस्थिति को ले लेते हैं। लेकिन इस कलयुगी दुनिया में, जहां समस्याओं की दुनिया है, प्रॉब्लम की दुनिया है, हम संगम पर हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि उसका सेक लगेगा। जैसे दो तीन महीना गर्मी के दिन थे, दो तीन महीना पीछे गर्मी के दिन थे, तो गर्मी लगती थी मई जून अप्रैल, गर्मी का महीना था, स्वाभाविक है, लेकिन उससे हम अस्त व्यस्त नहीं होते थे, अपनी साधन बना रखे थे, फैन रखे थे, हाथ का पंखा रखे थे, छाता रखे थे, कुछ न कुछ सेफ्टी का साधन रखे थे। अभी अभी बारिश पूरा हुआ है, बारिश का सीजन था, समस्याएं आई, लेकिन दुनिया के लोग घबरा गए, कहां बाढ़ आया, कहां तूफान आया, कहां कुछ हुआ, कहां बारिश नहीं हुई, लेकिन हम बाबा के बच्चे सब परिस्थिति में, हमारी स्थिति अगर श्रेष्ठ है तो सब परिस्थिति हमारे लिए समान है। अब स्थिति श्रेष्ठ बनाने के लिए जब जीवन ही प्रभु के हवाले कर दिया है, प्रभु के हवाले हो गए हैं, 11 तारीख के मुरली शाम के याद होगा बाबा से आप लोग मिलन मनाए हैं, कोई है जो बाबा से 11 तारीख को मिलन नहीं मनाया है, उसको अनुभव नहीं हुआ है? कोई हाथ नहीं उठा रहा। इसका मतलब सभी लोग 11 तारीख को भगवान से मिलन मनाए हैं। वो भगवान से मिलन मनाने वालों के नजदीक कोई परिस्थिति आ सकती है? कोई भी परिस्थिति नहीं आ सकती है। और बाबा ने क्या कहा, मिलन ही नहीं मनाया बल्कि हमारी दिल्लिया बच्चों की मेहनत बाबा देख नहीं सकता है। मोहब्बत, आप अपने लौकिक बच्चों को, आप अपने परिवार में चले जाइए, आपका बच्चा अस्त व्यस्त हो, बहुत मेहनत कर रहा हो तो आपको अच्छा लगेगा? फट से हाथ बटाएंगे, बेटा हमको दे दो, मैं करूंगा, आप थोड़ा रेस्ट कर ले। जब लौकिक माँ बाप अपने बच्चों को इतना ध्यान रखते हैं तो परलौकिक पिता परमात्मा हम बच्चों का कितना ध्यान रखता होगा। ये कलयुगी दुनिया है, हम जाएंगे, अगर हमको अपने डिस्टेंस, आप अपने अपने घरों से यूपी से आप आए हैं तो क्या प्रॉब्लम नहीं हुई होगी ट्रेन में, रास्ते में? लेकिन उस प्रॉब्लम के प्रॉब्लम नहीं हो लगा, क्यों? क्योंकि बाबा से मिलन मनाने जा रहे हैं, मधुबन में जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, घर की इतनी खिंचावट, इतनी आकर्षण कि वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगा या लगा? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आकर्षण घर के थी, आकर्षण बाबा के मिलन की थी। तो उसी तरह हमारी स्व स्थिति अगर इतनी स्ट्रांग हो, बाप समान हो, तो दुनिया के लोग कहेंगे कि इनके पास बहुत मुसीबत है, बहुत तकलीफ है, लेकिन हमको नहीं लगेगा। जैसे बाबा के सामने कितनी पेपर आई, अनेक प्रकार की पेपर आई। बाबा ज्ञान काल में हीरे जवाहरात का मर्चेंट था, समाज में बहुत इज्जत थी, इतने पैसे वाला था, इतना दानी था कि लोग, उनका लक्खी राज नाम था, लेकिन लक्खी बाबू कहते थे, लेख राज नाम था लेकिन लक्खी बाबू कहते थे, दुकान का भी नाम लक्खी बाबू के नाम से था, आज भी वो बोर्ड है। लेकिन बाबा के प्रवेशता होते ही परिवर्तन हो गया। अपने रिश्तेदार जो उस नजर से देखते थे, गांव वाले उस नजर से देखते थे, उनकी नजरिया बदल गई। वो पेपर लेने लगे, वो परिस्थिति के रूप धारण कर लिए, लेकिन बाबा अपने नशे में रहता था कि कौन मिला है। पहले हम कौड़ियों का बिजनेस करते थे तो लक्खी बाबू लोग कहते थे, क्यों? क्योंकि उनको कौड़ियां हीरे दिखाई देता था। आज बाबा सच्ची हीरे के बिजनेस कर रहा है तो उनको कौड़ी दिखाई दे रहा कि ये लक्खी बाबू कहां फंस गया, क्या हो गया। ये कहता है कि सब पवित्र बनो, ब्रह्मचारी बनो, माताओं बहनों को ऐसे शिक्षा दे रहे हैं, नजर बदल गया। ये नहीं उनको लगा, अरे ये तो बड़े बड़े संत नहीं कर पाए, और ये लखी बाबू, ये इनके मुख से, इनके वाइब्रेशन से इतने बच्चे, इतनी कन्याएं, माताएं, इतने लोग पवित्रता को अपना लिए, कितनी बड़ी बात है। ये लोगों को नहीं दिखाई दिया, उनके ही बच्चे, उनके ही वाइफ, उनके ही परिवार के सदस्य, माँ बाप बहने प्यूरिटी को धारण कर लिया। तो ये किसकी कमाल थी? शिव बाबा की कमाल थी। लेकिन बाबा को पता था, ब्रह्मा बाबा को पता था ये होनी है। तो हम बच्चों को भी ये पता है, हमको उच्च हायर एजुकेशन में हायर डिग्री लेनी है तो एग्जाम तो देना पड़ेगा। आप लोग यूपी में ऐसा कोई स्कूल कॉलेज देखा होगा जहां एग्जाम नहीं होता होगा, वहीं अपने बच्चों के एडमिशन करा दें ताकि जिंदगी भर एग्जाम नहीं हो, तो क्या होगा? वहीं के वहीं बच्चा रहेगा। आप लोग चाहते हैं, आप लोग ढूंढते हैं कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में अच्छे से अच्छे एजुकेशन ये करें जहां बहुत सख्ती से एग्जाम लिया जाए ताकि हमारा बच्चा उच्च निकले, उज्जवल निकले, बुद्धिशाली निकले। तो उसी प्रकार हम बाबा के बच्चे विश्व के मालिक बनने जा रहे हैं, देवता बनने जा रहे हैं, फरिश्ता बनने जा रहे हैं। क्या पेपर नहीं आएगी? बाबा हमारे लिए नई दुनिया की स्थापना करने जा रहा है, स्वर्ग की स्थापना करने जा रहा है। स्वर्ग में ले चलने के लिए क्या पेपर नहीं लेगा? आज हम नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं गांव में या कहां, तो हमारी मेकअप करते हैं, जो डायरेक्टर होता है, जो उनके लोग होते हैं, वो मेकअप करते हैं, हर एक्टर को मेकअप करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं, या वैसे ही पजामा कुर्ता पहन करके स्टेज पर आ जाता है? नहीं, मेकअप करते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं। तो उसी तरह हमको देवता बनना है तो अगर मेकअप मेरी हो रही है तो कोई इतराज है? सोचो, कोई पेपर ले मेकअप कर, पेपर मतलब क्या हुआ? वो मेकअप कर रहा है हमारी, उसको हम पेपर नहीं माने, उसको मेकअप माने। वो पाउडर लगा रहा है, वो कोई क्रीम लगा रहा है, वो कोई कुछ कर रहा है ताकि हमको विश्व के सामने अपना जो पार्ट है वो नंबर वन प्ले करे। तो ये परिस्थितियां क्या है? ये हमारी मेकअप है। जैसे कि कोई मूर्तिकार है, एक पत्थर को लेकर के उसको हथौड़ी लगाता है, हथौड़ी लगाते 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 एक दिन उससे मूर्ति की रूप दे देता है। अगर पत्थर समझ ले कि नहीं, मुझे हथौड़ी लगने से मुझे टूट जाना है, मैं टूट जाऊंगा, वो मूर्ति बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो ये पत्थर, ये हथौड़ी हमको मूर्ति का आविष्कार कर रहा है। तो जो भी परिस्थितियां आ रही है या आने वाली है वो हमको क्या बना रही है? मूर्ति बना रही है। कौन सी मूर्ति? फरिश्ता की मूर्ति। कौन सी मूर्ति? देवता की मूर्ति। कौन सी मूर्ति? सतयुगी दुनिया के में चलने वाली मूर्ति बना रही है। तो परिस्थितियों से हमको डरना है या मूर्ति बनना है? मूर्ति बनना है या डरना है? नहीं, हम इतना अनुभवी बन जाएं कि दूसरे हमारे को देख करके उनको प्रेरणा मिले, अरे कल ये कैसे थे, आज तो ये देवता हैं, आज तो ये फरिश्ता हैं, आज इनके चेहरे से, आज इनके बोल से, इनके रहन सहन से ऐसे वाइब्रेशन मिलता है। हमारी दादियां, हमारे बड़े कोई दूसरे दुनिया से आए थे, वो हमारे ही दुनिया से आए थे, जिस दुनिया में हम रहते हैं उसी दुनिया में वो लोग रहते थे, लेकिन उनको नजदीक जाओ, उनको मिलो तो क्या महसूसता होती थी? दिव्यता होती थी। क्योंकि वो हथौड़ी लग लग करके वो दिव्य बन गए थे, इसलिए हम लोगों को उस हथौड़ी से डरना नहीं है, बल्कि उसको आवाहन करना है, थोड़ा और अधिक हथौड़ी लगा दो ताकि हमारी मेकअप बहुत सुंदर हो जाए, जरा तेज लगाओ ताकि हमारी मेकअप अच्छा हो, हमको मुस्कुराहट हो, हमारे चेहरे पर रौनक आ जाए, हम देवता बन जाए, कोई दाग न रह जाए। तो इसलिए स्थिति को हमको श्रेष्ठ बनाना है, परिस्थितियां अपने आप चली जाएगी, फिर वो परिस्थितियां दूर से नमस्कार करेगी, क्योंकि हमारी मूर्ति जब मंदिरों में रखी जाती है तो क्या होता है, सब लोग दूर से नमस्ते करते हैं ना, इतनी श्रेष्ठ मूर्ति हो जाती है कि उसको टच करने की भी हिम्मत नहीं होती है, लोग टच करने नहीं देते हैं, दरवाजे से नमस्ते करते हैं, उनके देख करके, उनके स्पर्श से, उनके मिलने से हमारी खुशी बढ़ जाती है। हमारी हर छोटी मोटी, कोई दुनिया में देखिए, आप लोग भी अगर ज्ञान के पहले कोई कारोबार करते थे, कुछ मकान का उद्घाटन करते थे, तो पहले कहाँ जाते थे, मंदिर में जाते थे, दर्शन करने जाते थे, देवताओं के पास जाते थे, और उनको अपनी बातें सुनाते थे कि आज दुकान खोल रहे हैं, या गाड़ी ले रहे हैं, या ये फलाना खेती ले रहे हैं, या हम ये बिजनेस करने जा रहे हैं, आप चलिए, तो हमको महसूसता होती थी कि हमने वरदान ले लिया, अब हमारा काम सफल हुआ ही पड़ा है। और आज हमारे अंग संग परमात्मा रहते हैं, तो क्या हमारा कारोबार सफल नहीं होगा, कोई चिंता है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। अरे हमारे जैसा तकदीरवान दुनिया में कोई नहीं है, हमारा तकदीर देखना है तो लोग देख करके प्रसन्न हो जाएं, हमारे तकदीर को देख करके दुनिया वालों को प्रेरणा मिले, तकदीर बनानी हो तो ऐसे बनानी हो। वो पूछें कि किस स्कूल में जाते हो, किस कॉलेज में जाते हो, क्या करते हो, आपका तकदीर इतना ऊंचा है, ये हम बाबा को अप्रत्यक्ष करने के लिए ये हम लोगों का पुरुषार्थ होना चाहिए। नहीं तो हम ये समझे, अरे मधुबन में तो बहुत रिफ्रेश होकर के आए, और अभी ट्रेन में हमको पेपर आ गए, घर में गए तो वहाँ पेपर आ गए, संबंधी पेपर ले रहे हैं, नहीं, हम इतना पावरफुल योग करें, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाएं कि परिस्थिति हमारे पास आए लेकिन नमस्कार करने के लिए आए, हिला नहीं सके। अंगद ने अपना पांव जमा दिया रावण के दरबार में, तो बड़े बड़े योद्धा उसके पांव हिलाने के लिए आए, लेकिन हिला सके वो अंगद कौन था, हम लोग हैं। अपने स्थिति को इतना श्रेष्ठ बना लें, दुनिया के कैसी भी परिस्थिति आए वो नमस्कार करके चली जाए, लोग कहें ये वंडर है, ये परमात्मा के बच्चे हैं कि इतने विघ्न बाधा के बाद भी इनकी स्थिति इतनी श्रेष्ठ है, इनके चेहरे पर रौनक है, इनके चेहरे पर कोई उदासी नहीं है, कोई मुरझाहट नहीं है, ये बाबा का, ये ज्ञान का, यही रियल ज्ञान यही है। हमारी दादियों ने किया, बाबा को कितना नशा था अपने भविष्य का, हमेशा अपने भविष्य के नशे में बाबा रहते थे, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ गई, ऐसी भी परिस्थिति आ गई कि चार आना पैसा भंडारी में था और 400-500 बच्चे भोजन करने वाले हैं, सोचो बाबा को कैसा लगा होगा। लेकिन बाबा भंडारी जाती थी बाबा के पास, बाबा ब्रह्मा भोजन क्या बनेगा, बच्ची कोई बात नहीं ठहरो, 10 बजे आना, 10:30 आना, पोस्ट आएगा, बाबा आप ही करेगा। बाबा को इतना नशा था कि भगवान भूखे नहीं रह सकता है, नहीं रहता है, तो भगवान के बच्चे भूखे रहेंगे नहीं रहेंगे, इतना नशा था। चार आना पैसा भंडारी में है और 400 बच्चे खाने वाले हैं, कहाँ से आएगा? लेकिन उनको नशा था, 10 बजे 10:30 पोस्ट आता था, उसको लिफाफा को खोलते थे, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा है उसमें, पैसे में रुपए में सफेद पेपर लपेट करके उसमें डाला हुआ है, कहाँ से आया, कौन भेजा, क्या किया, कुछ पता नहीं। तो ये स्थिति एकदम निर्भय हो जाए, हम किसके हैं, किसके हाथ पकड़े हैं, कौन हमारे साथ है, ये निश्चय, इसको निश्चय बोलते हैं। थोड़ी सी छोटी मोटी बात में हम डगमग हो जाएं, नहीं। ये कलयुगी दुनिया है, लहरें पेपरें आएगी, जैसे कोई नाविक है, नाव चलाने वाला है, और वो समुद्र में चला जाए नाव चलाने के लिए, और ये सोचे कि समुद्र में लहरें नहीं आएगी, तूफान नहीं आएगा, समुद्र शीतल तालाब जैसा रहेगा, होगा? होगा कभी? नहीं होगा। समुद्र माना क्या? उछल। समुद्र माना क्या? हलचल। समुद्र माना क्या? तूफान, लहरें। तो उसी तरह ये दुनिया क्या है? समुद्र के समान है, परिस्थितियां लहरों के समान आएगी, लेकिन हमको हिला नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा नाविक, हमारा पतवार स्वयं परमात्मा है, बाबा है। इतना निश्चय, बाप समान बनने के लिए 11 तारीख को बाबा ने क्या कहा, मिलाओ बाबा कैसा था, हर बात में कोई संकल्प आता है तो उसको बाबा से मिलाइए, बाबा का ऐसा संकल्प है, संकल्प होता था, बाबा ऐसे करता था, ऐसे परिस्थिति में बाबा ऐसा करता था, नहीं। बाबा का नशा, बाबा का उमंग, बाबा को इतनी नशा होती थी, साधारण काम करता था बाबा, लेकिन नशा क्या था, अरे हम तो कल विश्व के मालिक बनने जा रहे हैं, हमारे तन में शिव बाबा है, स्वयं भगवान है, इतनी इसी नशे में था। एक बार की बात आपको प्रैक्टिकल सुनाएं, हमारी कुंज दादी जो पटना में रहती थी, उनको बहुत ज्ञान सुनाने में बड़ा स्पष्ट और बहुत फोर्स से सुनाती थी, तो बाबा ने उनको कोर्स कराने के लिए, विजिटर्स को अटेंड करने के लिए उनकी ड्यूटी दिया था। माउंट आबू पांडव भवन में एक अहमदाबाद से कोई बहुत बड़ा सेठ घूमने के लिए आया, पांडव भवन आया, उसको बहुत अच्छा लगा, पूछा कि यहाँ का नियम क्या है, तो दादी ने बताया कि 7 दिन का कोर्स करना पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि बस हम 7 दिन यहाँ रहेंगे और 7 दिन का कोर्स करेंगे। वो होटल में रहा था, होटल से आता था, 7 दिन का कोर्स किया, 7वां दिन कोर्स पूरा हुआ तो दादी ने बाबा के बारे में सुनाया कि हमारा बाबा, उनके अंदर परमात्मा आए हैं, परमात्मा के द्वारा ये सारी कारोबार चल रहा है। तो उसने बोला कि क्या बाबा जी की दर्शन हो सकती है? तो दादी ने कहा हाँ, क्यों नहीं हो सकती है। तो उनको विजिटिंग रूम में बैठा करके दादी बाबा के पास गई, और उस समय बाबा गेहूं साफ कर रहे थे, मम्मा गेहूं साफ कर रही है, दादियां गेहूं साफ कर रही हैं। तो कुंज दादी आकर के बोली कि बाबा वो भाई का कोर्स पूरा हो गया है, बहुत भावना वाला है, आप चलिए उनसे मिलने के लिए। तो बाबा ने कहा सिंपल भाषा में कि बच्ची, बच्चे को यहीं बुलाओ और हम यहीं मिल लेते हैं। तो कुंज दादी बोली बाबा हम आपके बारे में इतना बाबा भाई को बताया है कि इनके तन में भगवान है, भगवान आता है, और ये संस्था के मालिक हैं, और संस्था के मालिक के गेहूं साफ कर रहे हैं, वो क्या उसके ऊपर इम्प्रेशन पड़ेगा। तो बाबा कुंज दादी को देखा, मम्मा की तरफ देखा और मुस्कुराया, और मम्मा को कहा मम्मा देखो कुंज को कितना देह अभिमान है, कुंज को कितना देह अभिमान है, बोलती है कि बाबा गेहूं साफ कर रहा है, अरे बाबा अपना काम कर रहा है, कोई दूसरे का काम है क्या, क्यों नहीं साफ करेगा? तो ये सुन करके कुंज दादी अब ये हो गई कि बाबा ऐसे बोलता है, चलो जो भी हो उसको बुला करके यही मिला देते हैं, वो जो भी इम्प्रेशन ले जाना हो ले जाए। तो उस व्यक्ति को, उस व्यापारी को कुंज दादी वहां बुलाई, बाबा के सामने खड़ा कर दिया। बाबा तो गेहूं साफ कर रहे थे, बाबा ने देखा कि भाई आया है तो बाबा खड़े हो गए। बाबा खड़े हो गए तो बाबा से उसको विष्णु का साक्षात्कार हुआ। हमको तो लग रहा है बाबा गेहूं साफ कर रहा है, लेकिन किसकी स्मृति में कर रहा है? हम काम देख रहे हैं, स्मृति किसका है? शिव बाबा की स्मृति है। तो शिव बाबा की स्मृति में छोटा काम भी बड़ा काम है। तो जब बाबा खड़े होकर हो गए और उसे मिलने लगे तो उसको विष्णु का साक्षात्कार हुआ और आंख से आंसू बहने लगी और पांव पड़ गया। कहने का भाव कि बाबा की स्मृति, बाबा हमेशा ईश्वरीय नशे में रहता था। परिस्थितियां कैसी भी आई, हीरे जौहरात के मर्चेंट, इस मुट्ठी में हीरे रखने वाला, हीरे उठाने वाला, हीरे की पुड़ियां देखने वाला, और ऐसी समय आ गया, ऐसी परिस्थिति आ गई कि भोजन, ब्रह्मा भोजन बनाने के लिए लकड़ी नहीं था, कोयले नहीं थे, कैसे ब्रह्मा भोजन बनेगा? बाबा किसी को ऑर्डर नहीं करता था, बच्चे ये काम करो, नहीं, खुद करना शुरू कर देता था, बच्चे पीछे पीछे लग जाते थे। तो क्या था कि कोयले के चूरा पड़ा था गौशाले में, उन दिनों में बाबा के टाइम में थोड़े गौएं थी, गोबर था, गोबर लाया और चूरे में मिक्स करके पानी डाल करके उसको गोला बना रहा है और उछाल रहा है। अरे बाबा विश्व का गोला बना रहा है, सोचो परिस्थिति कैसी है, हाथ कहाँ डाला है, गोबर और कोयले के चूरे में, ऐसा परिस्थिति, ऐसी हो तो व्यक्ति का क्या स्थिति होगा? लेकिन बाबा की स्थिति, अरे बाबा विश्व का गोला बना रहा है और उछाल रहा है। नहीं तो मनुष्य सोच सकता है, अरे कहाँ हम हीरे का मर्चेंट और कहाँ फंस गए, गोबर में आज हाथ लगाना पड़ रहा है, कोयले के चूरे में हमारा हाथ लगाना पड़ रहा है, ऐसे भी तो सोच सकता था। लेकिन नहीं, बाबा को इतना मस्ती, इतना ये कि बाबा कुछ कोयले के चूरे को ये गोला बना कर तो उछाल रहा है, अरे बच्चे बाबा विश्व का गोला बना रहा। इतना बाबा के पास परिस्थितियां आई लेकिन बाबा ने कभी हिला नहीं। परिस्थितियां बाबा की स्व स्थिति से दूर से नमस्कार करके चली गई। एक बार की बात है कि दोपहर का टाइम था, सब यज्ञ का नियम है, आप लोग भी यहाँ आते हैं तो आप लोगों को भी पता है कि दोपहर को भोजन होता है, भोजन के बाद थोड़ा रेस्ट अपने अपने रूम में आप लोग, हम सब करते हैं। तो उन दिनों में सब दादियाँ, सब लोग भोजन करके 12 बजे भोजन हो जाता था, 1-1.30 बजे सब अपने अपने रूम में चले गए। बाबा को नशा चढ़ा हुआ था, बाबा अपने रूम में नहीं गया, हिस्ट्री हॉल में चला गया और हिस्ट्री हॉल के लाइट को जला करके डांस कर रहा है। 93 इयर्स का ओल्ड बाबा डांस कर रहा है। अरे बच्चे कल बाबा तो ऐसे नारायण बनेगा, नारायण बनेगा, देवता बनेगा, श्री कृष्ण बनेगा। दादी जानकी सुनाती थी, वो भी योग भोजन करके कहीं योग कर रही थी, 2 बजा तो सोचा कि चलो जाकर के थोड़ी रेस्ट करके हम भी आए, अपने रूम में जा रही थी और हिस्ट्री हॉल में लाइट जला था, आवाज आ रही थी, तो सोचा कि कौन सी पार्टी आई है, जरा चल के देखें। तो रूम में ना जाकर के हिस्ट्री हॉल के दरवाजे पर खड़ी हुई तो बाबा डांस कर रहा है। अरे बाबा को क्या हो गया है? बाबा का नजर पड़ा तो बोलते हैं, बाबा बच्ची इधर आओ इधर। अरे बाबा तो कल ऐसा श्री कृष्ण बनने वाला है, श्री नारायण बनने वाला है, इस तरह की मस्ती। उम्र क्या है वो कुछ पता नहीं है, इतना मस्ती में रहता था बाबा। तो बाबा हर हमेशा चाहे कैसी भी परिस्थिति आई, हमारी दादियां, चलो बाबा तो शिव बाबा उनके तन में थे तो परिस्थिति उनको कोई असर नहीं किया, हमारी दादियां उनके पास इतनी परिस्थिति आई लेकिन परिस्थिति में वो दादियां हिली नहीं। जब बाबा उन लोगों को सेवा पर भेजा, आज जैसे मैं लखनऊ आऊं, स्टेशन आऊं चाहे एयरपोर्ट पर आऊं, तो आप सब गाड़ी लेके आएंगे, आप सबको प्रोग्राम रहेगा। उन दिनों में हमारी गुलजार दादी लखनऊ गई, स्टेशन पर गई, कोई नहीं अपना, स्टेशन पर उतरी, परिस्थिति, लेकिन बाबा साथ है इतना निश्चय है। और दादी वहां से कुल्ली से पूछ करके बाहर कहां जाएंगे कैसे जाएंगे, बाहर गए और वहां पूछे कि यहाँ धर्मशाला होता है, धर्मशाला है, जाकर के धर्मशाला में ऑटो रिक्शा वाला छोड़ करके आया और वहां धर्मशाला में रह करके लोगों ने कहा कि यहाँ रह करके धर्मशाला में आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप चीफ मिनिस्टर से मिलिए और उनको समझाइए कि आप क्यों आए हैं, कहाँ आए हैं। दादी को अच्छा लगा। दूसरे दिन सुबह, उन दिनों में परमिशन अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती थी, चीफ मिनिस्टर के बंगलों पर चले गए और लोग भी बहुत आए थे चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए। दादी भी वहां जाकर एक कोने में बैठ गई, चीफ मिनिस्टर अपने रूम से आया, बंगले से बाहर आया अपने मिलने के लिए सबसे, तो देखा कि सफेद ड्रेस में इतनी दिव्य, वो हैरान हो गया। तो लोगों के पास न जाकर के दादी के पास आया और बोला कि बहन जी आप यहाँ किस लिए आए हैं, हमारे पास किस लिए आए हैं। दादी ने कहा बाऊ जी हमको पता लगा है कि ये मिनिस्टर क्वार्टर आपके पास बहुत सारे खाली हैं, बहुत सारे आपने बनवाया है, उसमें एक क्वार्टर हमको दीजिए, वहाँ हम राजयोग सिखाएंगे, सबके मन में सुख शांति पवित्रता लाएंगे, हमको 3 महीना के लिए दीजिए। वो समझाने की कोशिश किया दादी को कि नहीं ये प्राइवेट को नहीं दिया जाता है, ये तो सरकारी बंगला है, सरकारी क्वार्टर है, मिनिस्टर के लिए है, एमएलए के लिए है, आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन दादी इतना प्यार से कहे कि वो दादी के पास से वो जाए भी नहीं। उसके सेक्रेटरी बार बार इशारा कर रहा है साहब बहुत लोग खड़े हैं उनके पास चलिए, वो इतना दादी के पास पावर था कि वो पावर उनको हटने नहीं देती थी। फिर लास्ट में उनको कहना पड़ा अच्छा ठीक है 3 महीना के लिए ये क्वार्टर एक खोल कर इनको दे दो, जो कभी नहीं होता है वो हुआ। कैसे हुआ, स्थिति पावरफुल हुई तो परिस्थिति पर विजय हुआ या नहीं हुआ। और दादी 3 महीना में वहाँ कौन किसको कोर्स कराई, किसको मुरली सुनाई, सब मिनिस्टर, लखनऊ के मिनिस्टर बाबा के बच्चे बने, मुरली सुनते थे। चीफ मिनिस्टर की वाइफ मुरली सुनने कोर्स करने आती थी, उसके परिवार वाले, वो दिन गिनती थी, गिनती करती थी, दादी दिन नहीं गिनती करती थी, कब 3 महीना होगा हम जाएंगे, वो दिन गिनती करती थी और बोलती थी दादी अब तो 1 महीना रह गया आप हमको छोड़कर जाएंगे, अत नहीं नहीं हम क्यों जाएंगे, तो ये तो आपको खाली करना पड़ेगा, तो आप बैठे हो ना। वो बोलती है कि एक बंगला हमारा खाली है, ये छोड़ दीजिए, हमारे बंगले में चलिए और वहाँ हमेशा के लिए आप सेवा करना शुरू करिए। स्थिति परिस्थिति कुछ नहीं है, स्थिति बनाना है। और स्थिति बनाने के लिए मुश्किल क्या है, बाबा साथ है। 11 तारीख को मुरली में कहा बच्चों की मेहनत बाबा देख नहीं सकता है, मोहब्बत, मोहब्बत में हम ये करें, बाबा से मोहब्बत रखे। अरे परमात्मा मिला है, सोचो कौन पढ़ा रहा है, परमात्मा पढ़ा रहा है, ये किस जन्मों की राजाई दे रहा है, अगर थोड़ी पेपर आ गई तो घबराने की क्या बात है, कोई बात है क्या? सोचो क्यों घबराते हैं? पहले पुराने जमाने में, अभी तो बहुत दिन से हम मार्केट गए नहीं हैं, एक मटका मिट्टी का लेते थे तो उसको बजाते थे, कान के पास ठोकते थे, ये टूटा तो नहीं है, चार आना उन दिनों में मिलता था या कितना मिलता था, एक चार आने के मिट्टी के मटके को ठोकते थे। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने जा रहा है, क्या वो ठोक बजा करके नहीं बनाएगा? ऐसे ही जो आया उनको लेके चला जाएगा? तो हम क्यों डरते हैं? पेपर आ गया, अरे पेपर आ गया तो आगे बढ़ाने के लिए आया है ना। आज आपका बच्चा आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कितना मेहनत करता है, चार 14 घंटा 15 घंटा 12 घंटा पढ़ाई पढ़ता है। आप उसको कहते हैं बेटा चलो आपको माउंट आबू ले चलते हैं, नहीं पापा आप घूम करके आओ, हो करके आओ, मुझे एग्जाम देना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे नंबर वन रिजल्ट लाना है, पढ़ाई 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 करता है, एक जन्म के लिए करता है। कितना टफ एग्जाम होता है, कितनी टफ होता है, हम सब जानते हैं आईएएस ऑफिसर की कितनी टफ पेपर होती है। वो टफ पेपर देने के लिए रात दिन मेहनत करता है और वो पास होता है, कलेक्टर बन जाता है, आईएएस ऑफिसर बन जाता है, ऑफिस में जाता है, हार्ट अटैक हो गई, वहीं शरीर छोड़ देता है। क्या अगले जन्म में वो कलेक्टर बनेगा? नहीं, एक जन्म के लिए इतना मेहनत करता था, करता है। तो बाबा हम बच्चों को 21 जन्म के लिए देवता बना रहा है, राजभाग दे रहा है, तो थोड़ा पेपर आ गया तो घबराने की बात है या डांस करने की बात है? 21 जन्मों के आगे पेपर पेपर है या पेपर खेल है, क्या समझना है बोलिए? खेल है। 21 जन्मों के लिए देवता बन रहे हैं, कलेक्टर नहीं बन रहे हैं, डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं। तो देवता बन रहे हैं तो क्या पेपर नहीं आएगा? तो उसको पेपर समझेंगे? अरे उसको आह्वान करेंगे, इतना देर से क्यों आए, पहले तो आओ, हम तैयार हैं पेपर देने के लिए। इस तरह की स्थिति हमारी हो, लोग कहें अरे सचमुच भगवान के बच्चे, हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो, हमारी दादियों की स्थिति कितना श्रेष्ठ था, क्या उनके पास पेपर नहीं आया? आप बाबा के बच्चे हैं, चलते चलते शरीर का कोई पेपर आ जाता है, कोई बीमारी हो जाती, मान लीजिए कैंसर हो गया, कोविड हो गया, क्या घबराना है? कल पहले भी हुआ था, कल पहले भी हमारी विजय हुई थी, बच्चों के विजय है कि नहीं? जब जन्म हमारा हुआ तो क्या कहा गया, बच्चे विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, यही बताया ना दीदियों ने। जब विजय जन्म सिद्ध अधिकार है तो कोई पेपर आया तो अधिकार को छोड़ना है? अरे मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको आह्वान करें, खुशी खुशी रिसीव करें, इतना खुशी मौज में रहें कि वो पेपर देख करके चला जाए। अरे ये इसको तो कोई फिकर नहीं है, कोई गम नहीं है, यहाँ खड़ा होने से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। एक दादी की बात सुना रहे हैं, एक दादी को जीभ का कैंसर हुआ, उसको ले गए बॉम्बे अपने हॉस्पिटल में, वहाँ सेंटर है, सिक्स फ्लोर पर सेंटर है, दादी को फिफ्थ फ्लोर पर हॉस्पिटल में रखा, मैं सिक्स फ्लोर पर था सेंटर पर। सुबह दादी का फोन आता है, कल डॉक्टर से बातचीत हो गई, ऑपरेशन फाइनल हो गया, जीभ काटना है। तो दादी का फोन आया सुबह 5 बजे कि आप रूम में आएंगे? हम बोला जी दादी मैं 2 मिनट में आता हूँ। मैं रूम में गया तो सोचते गया कि दादी अब डर गई है तो कहेगी कि ले चलो मेरे को यहाँ से, कैंसर हो ही गया है, जीभ कटने के बजाय जितना दिन भी रहूंगी कम से कम लोगों से बोलूंगी तो सही। जीभ कट जाएगा तो हम रह करके क्या करेंगे, बोलना नहीं होगा, मुरली नहीं सुनाना होगा, इसे तो घर चले। मैं ये सोच के गया, दादी के पास गया तो खड़ा हुआ तो दादी क्या बोलती है, भाई मेरा जीभ 9 बजे सर्जरी होगी, कटेगा, अभी मेरा जीभ है, अभी सुबह 7 बजे मुरली सुनाने के लिए मेरे को क्लास में ले चलो, मैं मुरली सुना लूं, फिर जीभ कटवाते रहो। परिस्थिति इतनी छोटी आयु में, 6-7 साल के जब बाबा ने बोर्डिंग खोला, उस बोर्डिंग के दादी हमारी थी, ये नहीं मुख से निकला कि इतने तन मन धन दे दिया, बाबा को लगा दिया, और बाबा ने एक छोटी सी मदद नहीं किया, मेरा जीभ कटवा रहा है, नहीं, ये दादी कहा कि नहीं जीभ कटेगी, इससे तो पहले मेरे को मुरली सुनाने के लिए ले चलो, मैं मुरली सुना दूं, फिर जीभ कटे तो कटती रहे। ये है परिस्थिति, हर के पास आती है, दादी ने कभी उल्लाहना नहीं दिया, पता नहीं किस जन्म का, 84 जन्म में किस जन्म में हमने क्या भूल किया है, क्या किस कष्ट दिया है जो आज मुझे कष्ट मिल रही है, उसको कष्ट नहीं समझना है, उनको देना है। तो ये परिस्थिति उनके पास भी आई, लेकिन परिस्थिति नहीं लगा। तो क्या ये दादियों के लिए ही ज्ञान था? नहीं, ये ज्ञान हम सब बच्चों के लिए है। हम जितना जितना बाबा के समीप रहेंगे उतना पावर मिलेगी, और परिस्थिति को सामना करने के लिए शक्ति मिलेगी। हम बाबा के नजदीक रहें, हम 63 जन्मों से पुकारते आए, भगवान आओगे, हम आपके ऊपर बलिहार जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, और अब बाबा आया, अपना बनाया, तो हम हर बात में शक करते हैं, दूर रहते हैं, नहीं बाबा के ज्यादा नजदीक आएंगे तो बस हमारा परिवार का क्या होगा। सोचो, देवताओं के आगे मन्नत मांगते थे तो काम सिद्ध हो जाता था, आज भगवान हमारे साथ है तो परिवार कितना अच्छा होगा ये नहीं समझते हैं। सोचिए, बाबा हमारे साथ है, जिस घर में माताएं बैठी हैं, आप अपने घर में हो, अगर 10 बार बाबा को बुलाओ, भोजन बनाते सुबह उठते टाइम बाबा को गुड मॉर्निंग करो, बाबा को बुलाओ, बाबा आओ, और भोजन नाश्ता बनाओ तो बाबा को बुलाओ, भोग लगाओ, बाबा आओ आपके लिए नाश्ता बनाए हैं, जब नाश्ते के बाद फ्री हो गए तब बुलाओ, बाबा हम फ्री बैठे हैं, आप आओ, हम आपसे रूह रियान करेंगे। इस तरह से 10 बार अगर आप बाबा को बुलाते हैं तो घर कैसा होगा, जिस घर में 10 बार भगवान आए। मंदिर में एक मूर्ति को रख देते हैं तो वो मूर्ति के कारण उस मंदिर का वातावरण ऐसा पावरफुल हो जाता है कि कैसा भी व्यक्ति जाता है उसको शांति मिलती है, सुख मिलता है, शकुन मिलती है। और 10 बार हम बाबा को बुलाएं और 10 बार बाबा हमारे घर में आए तो उसका वाइब्रेशन कैसा होगा, पावरफुल होगा या नहीं होगा, घर मंदिर होगा या नहीं होगा, घर समस्याओं का अड्डा होगा, नहीं वो मंदिर होगा, बल्कि हमारी समस्या क्या, पड़ोसियों की भी समस्या दूर हो जाएगा। जो भी रिश्तेदार आएंगे समस्या लेकर के, उनकी समस्या दृष्टि आप देंगे, आपकी दृष्टि से उन समस्या मुक्त हो जाएंगे। आप कुल देवी हो, कुल देवी, देवी घर में अनेक नहीं होती है, मंदिर में एक ही देवी होती है, गांव में एक ही देवी होती है, तो आप अपने घर के देवी हो, देवता हो, उस स्वरूप में रहो, कष्ट आता है, परिस्थितियां आती है, वो कुछ करेगी नहीं, आप तंग नहीं हो जाए, आप दुखी ना हो जाए, उस परिस्थितियों में आप ढल ना जाए। बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पति साथ नहीं दे रहा है, रिश्तेदार साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, सुबह उठो, वो लोग सोने के उनको आदत है, सोने दो, आप उठ करके बाबा को आवाहन करो, ये नहीं कहो कि ये राक्षस हैं, तंग करते हैं, बिच्छू टिंडन है, डंक सारा दिन मारते हैं, नहीं ये नहीं करो, इस दृष्टि से उनको नहीं देखो, अरे ये तो बाबा के बच्चे हैं, ये हमारे से आगे जाने वाले हैं, बाबा आप आओ, इनको शक्ति दो, इनको वाइब्रेशन दो, इनको दृष्टि दो, भगवान आ करके दृष्टि दे, वो सोए भल हैं, वो उठते उनको क्या कैसा वातावरण मिलेगा, कैसा लगेगा, कैसा सुकून उनको महसूस होगी, वो उस खुशी में उठेंगे, उनकी आंखें खुलेगी, अरे आज तो मजा आ गया, आज इतना अच्छा लग रहा है, और कहेंगे मम्मी क्या हो गया, आज तो बहुत मजा आया। वो आपके पास आए, आप उनको ज्ञान सुनाने के पास सुनाने के लिए नहीं जाइए, रिश्तेदारों को ज्ञान सुनाया नहीं जाता है, ज्ञान की वाइब्रेशन, अपने जीवन की वाइब्रेशन, अपने जीवन के परिवर्तन उनका ज्ञान होगा, हम अपने जीवन को परिवर्तन करें, उसमें ढालें, उस सांचे में ये करें, हम नहीं करेंगे कौन करेगा, सोचो। रोज बाबा इतनी मुरलियों में कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाता है, कहां बाबा क्या कहते हैं, एक एक मुरली का भर्षण शब्द लाखों रुपया के बराबर है, आप सोचो लाखों रुपया रोज सुबह सुबह अर्न करने वाले, जमा करने वाले, क्या वो कंगाल हो सकते हैं क्या, सोचो। अरे जो धन के राजा हैं उनके पास गरीबी आ ही नहीं सकती है, और धन का राजा तो कोई भी हो सकता है, एक झोपड़ी में रहने वाला भी धन का राजा, वो ज्ञान का राजा हो सकता है। कबीर उसको महल नहीं था, झोपड़ी था, लेकिन ज्ञान था, और हमको तो सुपर ज्ञान परमात्मा दे रहा है, शिव बाबा दे रहा है, लाखों रुपया का ज्ञान रोज रोज हम लोगों को दे रहा है, हम कितने धनी हैं, उस नशे में रहें। बाबा कहता है कि बच्चे तुमको हम गोद लेने आए हैं, थोड़े दिन की मुरली सकार मुरली याद करो, बाबा कहा है ना कि बच्चों तुमको हम गोद लेते हैं, अभी कौन बैठे हैं, भगवान के गोदी के बच्चे बैठे हैं, मतलब कौन है, मास्टर भगवान है ना, जैसे बाबा ने एक्सप्लेन किया कि कोई अगर सेठ को बच्चा नहीं है तो गरीब का बच्चा एडॉप्ट करता है, बच्चा बाप के पास आते, वो सेठ के पास आते, गरीबी भूल जाता है, माँ बाप को भूल जाता है, और उसको शाहूकारी की नशा चढ़ जाता है कि मेरे बाप का फैक्ट्री है, मेरे बाप का दुकान है, इतने करोड़ों रुपया है, और हमारा बाप गोद लिया है, वो कौन है, सोचो। ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, संपत्ति का सागर है, जो सुख के सागर के बच्चे दुख हो सकता है क्या, सोचो, नहीं हो सकता। इस नशे में रहें, इतना नशा हो, अरे दुनिया में भी नशा लोगों को होता है, आप लोग यूपी से आए हैं, यूपी बिहार बहुत नजदीक रहता है, वहां कहते हैं साधु सत्वा खाता है, हरि गुण गा करके खाता है, कहते हैं ना साधु सत्वा खाए हरि गुण गा करके, हम कुछ भी करें साधारण भोजन हो, लेकिन परमात्मा को खिला करके खाएंगे तो क्या होगा, वो ब्रह्मा भोजन 36 प्रकार के भोजन से भी स्वादिष्ट होगा। फल साग रोटी खा रहे हैं, लेकिन किसको खिला रहे हैं? स्वयं परमात्मा को खिला रहे हैं। साग रोटी सतयुग में 36 प्रकार का भोजन अपने पिता नारायण को खिलाएंगे, मम्मी लक्ष्मी को खिलाएंगे, शिव बाबा को नहीं खिलाएंगे। ये संगम का समय है, हम अपने हाथों से शिव बाबा को गिट्टी खिला रहे हैं। आप सोचो, शिव बाबा को गिट्टी खिलाने वाले कभी भूखे रहेंगे? सोच लो, क्या है परिस्थिति बताओ, है कोई गरीबी है? नहीं, मन की गरीबी है। बाबा से दूर हो जाते हैं, गरीबी आ जाती है। बाबा के गोदी में बैठे रहें, झोपड़ी में बैठे रहें, कोई गरीबी नहीं है। हमारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, हमारे जैसा साहूकार कोई जन्म नहीं लिया है। ये है, हमारे पास ज्ञान है। एक भक्त मुरली में बाबा ने क्या कहा, बच्चे, थोड़े दिन की मुरली था, बच्चे मान लो जी एक थाली आपके नाम से आ गया कि ये भोजन आपको करना है, टेबल पर आ गया, आप सामने बैठे हो, बहुत स्वादिष्ट भोजन है थाली में, बहुत ताकत वाला भोजन है, ब्रह्मा भोजन, खाते ताकत आ जाएगी। लेकिन जब तक खाते नहीं है, थाली में है, तब तक वो ताकत मिलेगी? सोचो, बाबा ने बताया, थाली आपकी है, नाम आपका लिखा हुआ है, आपके आगे है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते हो, अंदर डालते नहीं हो, तो ताकत महसूस होगी? नहीं होगी। तो इसलिए उसको स्वीकार करो, वो जाके रस बनेगा, ताकत बनेगा, शक्ति बनेगा। तो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान स्वरूप हम नहीं बनते हैं, उसको हजम नहीं करते हैं। ज्ञान हमारा है, थाली हमारी है, लेकिन उसको स्वरूप, उसको अंदर डालें। उसी तरह हम ज्ञान स्वरूप बने। बाबा क्या था? स्वरूप बन गया। बाबा को भी ज्ञान क्या मिला? शिव बाबा ने कहा कि बच्चे तुम आत्मा हो। हमको भी दीदी ने कोर्स कराया तो कहा कि आप आत्मा हो। हम आज तक ज्ञान हो गया, मैं अपने को आत्मा समझता हूँ, एक घंटा लेक्चर करूंगा आत्मा के ऊपर, स्वरूप नहीं बना। तो आज क्या कंप्लेन करते हैं, मेरी दृष्टि वृत्ति जाती है, शरीर दिखाई देता है। 11 तारीख की मुरली, अव्यक्त मुरली, अरे ये देवी है, बहन भी नहीं, देवी है, ये दृष्टि क्यों नहीं देखते हैं? ये आत्मा है, ये दृष्टि क्यों नहीं देखते हैं? इस तरह से हम स्वरूप बने, केवल बातें नहीं, स्वरूप बने। कहाँ टाइम, अब टाइम आकर के पहुंचा है, घर चलना है, कब फरिश्ता बनेंगे? आज तक हम लोग क्या कहते आए हैं, फरिश्ता बन रहे हैं ना, हम ब्रह्मा कुमार हैं, हम पुरुषार्थी हैं। ये पुरुषार्थी के तकिया लगा करके कब तक सोए रहोगे? नहीं, हम फरिश्ता हैं, हम देवता हैं। अगर फरिश्ता समझेंगे तो भूल नहीं होगी। फरिश्ता किसी को देह को देखता है क्या? तो दैहिक आकर्षण खत्म, किसी को देह दिखाई ही नहीं देगा, आत्मा दिखाई देगी। ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, आत्मा किसी का ये नहीं करता। उसी तरह हम अपने स्वरूप में रहें। बाबा अब वो दिन देखना चाहता है। क्यों? बाबा कई बार गुलजार दादी के द्वारा कहा है, बच्चे इतना दुख के पहाड़ लोगों के ऊपर हैं, कष्ट में हैं, उनके कष्ट को निवारण तो करो। अमृत वेले बाबा शांति के सागर शांति लुटा रहा है, हम सोए हैं, अगर उठ भी गए तो झुटका खा रहे हैं। अरे हे पूर्वज, कब दान करोगे? शांति का दान कब करोगे? सतयुग में चल के करेंगे हम लोग? अलर्ट रहेंगे? नहीं, अभी जरूरत है दुनिया को, सबको, प्रकृति को शांति की, सुख की, शक्ति की। अभी हम बाबा से ले करके लोगों को भरपूर करें। हम भरपूर करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो वो हमारी दासी बनेगी, नहीं तो प्रकृति क्यों दासी बनेगी? कोई किसी को क्यों ओबलाइज करता है जब उसको सुख दो? मान लो जो कोई बीमार पड़ता है, एक एप्पल दे करके आते हो, उसके सिर पर हाथ रख के आते हो, समाचार हॉस्पिटल में पूछ के आते हो, वो आकर के आपको फोन करता है, दीदी आप आए, हमको दृष्टि दिया, एप्पल दिया, हमारी बीमारी दूर हो गई। ये काम करना है, अभी ये काम बाकी है, लोगों को कष्टों से दूर करें। हमारी दादियां करती थी, गुलजार दादी के बाद टाइम हो गया है, एक बात सुनाऊंगा और पूरा करूंगा। गुलजार दादी बॉम्बे में थी, 2-3 साल तक रही, हम जाते रहे, महीने में एक बार तो जाना ही जाना था, कभी 2 बार भी हो जाता था। एक बार की बात है, शाम के टाइम में दादी बैठी है चेयर पर, बहनों ने तैयार करके उनको बैठा दिया है बरामदे में, हॉल में, और वो छोटी मोटी कारोबार में उनके संभाल करने वाली बहनें बिजी है। मैं गया, दादी को देखा कि गहरी चिंतन में है। मैं प्लास्टिक की कुर्सी लेकर के उनके नजदीक बैठ गया, काफी देर तक बैठा रहा, वाइब्रेशन लेता रहा। जब दादी नीचे उतरी तो हमारी तरफ दृष्टि दिया, मुस्कुराई, तो हमने बोला, दादी आप क्या सोच रहे थे, आपको कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई बात है तो मुझे बताइए, मैं आया हूँ, डॉक्टर को बुलाकर लाऊंगा, वो चीज लाऊंगा, आपको दर्द खत्म हो जाएगा। दादी मुस्कुराती है और बोलती, क्या बोलती है, अरे भाई मैं सोच रही थी दुनिया कितना कष्ट में है, इनकी कष्ट कैसे निवारण करें, ये सोच रही हूँ, मेरे को क्या तकलीफ है, कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं, मैं आराम से बैठी हूँ इस छोटी कुटिया में। खुद बीमार अपनी बीमारी को वर्णन नहीं करती है और दूसरों की कष्ट के लिए सोचती है कि इनका कष्ट दूर कैसे करें। वो पूर्वज हैं, वो फरिश्ता हैं। तो खाली दादियों को फरिश्ता बनना है या हम लोगों को भी बनना है? वो कौन सा दिन आएगा, उनको भी तो कष्ट थी, तकलीफ था, लेकिन नहीं, अपनी तकलीफ कोई तकलीफ नहीं। दादियां हमारी बीमार होती थी, दादी गुलजार को बीमार थी, हम ब्रिज कैंडी में, बॉम्बे में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाया, वो डॉक्टर उद्वाड़िया जी का नाम सुना होगा, वो किसी पेशेंट से 2 मिनट से ज्यादा मिलता नहीं था, दादी के पास आता था, तो दादी अगर चेयर पर बैठी है तो कॉट पर बैठ जाता था, अगर दादी कॉट पर लेती है, चारपाई पर लेती है, तो डॉक्टर चेयर पर बैठता था। और दादी पूछती है, वो डॉक्टर को कुछ पूछने के पहले दादी पूछती है, डॉक्टर जी आप कैसे हो? क्या डॉक्टर पिघल जाता था। ओके, दीदी आ गई हैं, सॉरी मैं पूरा करता हूँ। तो डॉक्टर पिघल जाते थे, कहने का भाव, वो स्थिति हमारी होनी चाहिए। क्यों? हमारे साथ कौन है? स्वयं परमात्मा है। परमात्मा के साथ रहिए और परमात्मा को साथ रख करके सब काम करना है। ओम शांति। थैंक यू।
बांधी है जीवन।
तुझसे बाबा बांधी है जीवन।